कृतवान किल कर्माणि
कृतवान किल कर्माणि
सहरामेण केशवः
सहरामेण केशवः
अतिमर्त्यानि
भगवान्
गूढः
कपटमानुषः
कृतवान् किल कर्माणि
कृतवान् किल कर्माणि
सहरामेण
केशवः
अतिमर्त्यानि
भगवान्
गूढः
कपटमानुषः कर्माणि सहरामेण केशवः
अतिमर्त्यानि
भगवान् किल कर्माणि सहरामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः
श्रीकृष्णने अतिमर्त्यानि
अलौकिक
भगवान्
गूढ
प्रच्छन्न
कपट
ऊपर से
मानुषः
मनुष्य अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद भगवान कृष्ण ने बलराम सहित सामान्य मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तात्पर्य श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। क्योंकि भगवान राम भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था, अतएव अनेक धूत व्यक्तियों ने निजी अवतारों की अपनी सृष्टि की है। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ कर्तव्य दिखलाकर लौकिक मतदान द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार न थे, वे अपने आविर्भाव काल से ही भगवान थे। वे अपनी तथा कथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए थे। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहाँ उन्होंने नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार बलराम भी, जो भगवान कृष्ण के पूरक हैं, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी के से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंधों में हुआ है और 10वें स्कंध में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई हैं। इस ग्रंथ को ज्यों-ज्यों कोई पढ़ता है त्यों-त्यों यह सब ज्ञात होता जाता है। किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अति मानवीय हैं। यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथा कथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते। अतएव नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान भगवान हैं। अनुवाद को दोहराइएगा। भगवान कृष्ण ने बलराम सहित
सामान्य मनुष्य की भांति
क्रीड़ाएं की
और इस प्रकार से
प्रच्छन्न रहकर
उन्होंने
अनेक अलौकिक
कृत्य किए।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वकदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ना। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणीविचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो भगवान के जो कार्यकलाप होते हैं उनको समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अधिकतर लोग भगवान कौन है ये नहीं जानते हैं, इसलिए उनके कार्यकलापों को भी वो गलत समझते हैं। जब तक हम किसी व्यक्ति को सही तरह से नहीं जानेंगे, विशेष करके उसकी स्थिति क्या है, उसका पद क्या है, उसकी शक्ति क्या है इत्यादि, हम ठीक तरह से उसके कार्यकलापों को समझ नहीं पाएंगे। यदि समझ लीजिए कि कोई राजा है और हम नहीं जानते हैं कि राजा है और राजा के लिए कोई विशेष चीज़ों की व्यवस्था की गई है, हम सोचेंगे कि ये है इसके लिए क्यों ऐसे व्यवस्था की गई है, परंतु वो तो राजा है। जब हम समझ में आएगा कि ये राजा है तो फिर सब ठीक ठाक हमारे मन में वो उन कार्यों के बारे में भी ज्ञान हो जाएगा कि ये राजा है इनके लिए इसलिए इनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के राजा हैं, आध्यात्मिक जगत के भी राजा हैं, और उनको जब हम नहीं समझते हैं तो उनके कार्यकलापों को भी गलत समझते हैं। वैसे श्री कृष्ण जब यहाँ प्रकट होते हैं तो वो बिल्कुल मनुष्य की तरह ही दिखते हैं, इसलिए लोग उनको साधारण मनुष्य समझते हैं। ये बहुत बड़ी गलती वो करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अवजानंति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वरम, कि हे अर्जुन, जो मूढ़ लोग हैं, जो अज्ञानी हैं, वो मुझे नहीं जानते हैं। अवजानंति माम मूढ़ा, वो क्यों नहीं जानते, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मानुषिम तनु आश्रितम, वो सोचते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, क्योंकि मैंने मनुष्य रूप का आश्रय लिया है, अर्थात मैं मनुष्य की तरह दिखता हूँ, मेरा भी आकार मनुष्यों की तरह है, दो हाथ है, कान है, नाक है, सब मनुष्य की तरह दिखने वाले हैं, मेरा रहन सहन, उठना बैठना, बोल चाल, खान पान, सब मनुष्यों की तरह है। तो लोग सोचते हैं कि मैं भी उनकी तरह एक साधारण मनुष्य हूँ। परम भावम अजानंतो, तो मेरे परम भाव को वो लोग नहीं जानते हैं, मेरे ऐश्वर्य, मेरी शक्ति, मेरे अस्तित्व को वो नहीं जानते हैं। मैं कौन हूँ, मम भूत महेश्वरम, मैं तो सारे प्राणियों का स्वामी हूँ, ईश्वर हूँ, महा ईश्वर हूँ, सबसे श्रेष्ठ ईश्वर सारे प्राणियों का मैं हूँ। तो लोग मुझे नहीं समझते हैं, वो एक साधारण व्यक्ति मुझे समझते हैं। ऐसे कई दार्शनिक हैं, विशेष करके आधुनिक काल में, और केवल दार्शनिक ही नहीं, ऐसे अन्य लोग भी कहते हैं कि वैसे भगवान नहीं है, भगवान का अस्तित्व नहीं है, मनुष्य ने भगवान को बनाया है, और क्योंकि मनुष्य को भगवान की आवश्यकता थी मनुष्य के मानसिक या अन्य उद्देश्यों के लिए, तो उन्होंने भी भगवान को मनुष्य के रूप में ही बनाया है। क्योंकि हमारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें, नाक, दो कान, तो हमने भी मनुष्य को, भगवान को भी ऐसे ही रूप दिया है, तो ये ऐसा आरोप लगाते हैं। परंतु वो नहीं जानते कि मनुष्य ने भगवान को मनुष्य के रूप में नहीं बनाया है, बल्कि भगवान ने मनुष्य को भगवान के रूप में बनाया है। दूसरे शब्दों में ऐसा नहीं है कि भगवान मनुष्य की तरह दिखते हैं, मनुष्य भगवान की तरह दिखते हैं। आप समझ रहे हैं, भगवान पहले से है, भगवान ने मनुष्य को बनाया है, जैसे कि उन्होंने 84 लाख योनियों को, सारे योनियों को उन्होंने बनाया, वो सबके पिता है, सबको निर्माण उन्होंने किया है। तो ऐसा नहीं है कि हमने हमारे रूप के अनुसार कृष्ण को बनाया है हमारी कल्पना से, नहीं, कृष्ण किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के या किसी साधारण व्यक्ति से के मानसिक चिंतन से उत्पन्न नहीं होते हैं या कल्पना से उत्पन्न नहीं होते हैं, किसी भी तीव्र बुद्धि की निर्मिति भगवान नहीं है। भगवान हैं, भगवान परम सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये वासुदेव श्री कृष्ण परम सत्य हैं, और इन्हीं के ऊपर अन्य सारे सत्य निर्भर होते हैं। वास्तवम अत्र वस्तु, भगवान श्री कृष्ण सबसे मूल वस्तु हैं, जिनके ऊपर सब कुछ आधारित होता है, समस्त सृष्टि के वो आधार है। जैसे कि कृष्ण स्वयं भगवद गीता में बताते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, वो कहते हैं कि हे अर्जुन मत्तः परतरम न अन्यत, कि मेरे से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है और सब कुछ बल्कि मेरे ऊपर आधारित है। जैसे कि एक मोतियों की माला में जो मोतियां होती हैं वो एक धागे के ऊपर आधारित होती है, तो हम जब मोतियों की माला को देखते हैं, या इसको भी देखिए, मोतियों की माला क्यों, एक हार है, फूलों का हार है। अभी ये फूल हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद फूल हैं। अभी ये ऐसे फूल रह सकते हैं? इसका कोई आधार है ना? क्या है आधार?
धागा,
धागा है। यदि हम बोलें कहाँ है धागा, हम नहीं देख सकते, हमको पहले धागा दिखाओ फिर हम विश्वास करेंगे कि धागा है, तो आप क्या बोलोगे? दिखा तो सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात, दिखाने का कष्ट करने के पहले ये थोड़ा विचार तो कर लो कि ये फूल अपने आप हवा में कैसे खड़े हो सकते हैं। इसके नीचे कुछ तो है जो उसको पकड़ के रखा है। तो जब हम फूलों को देखते हैं जिनका कोई एक आकार है, जो एक एक अवली है, इसकी एक श्रृंखला है, एक के बाद एक ये सब सजे हुए हैं, इसका मतलब है कोई ऐसी चीज है जो इनको बांध के रख रही है, नहीं तो ये ऐसे गिर जाते, इधर बिखर जाते। परंतु एक के बाद माला के रूप में जब हैं तो हम समझ सकते हैं कि एक धागा है, हालांकि उस धागा को हम अपनी आंखों से इस समय देख नहीं सकते हैं। ये तो एक साधारण बुद्धि की बात है, एक छोटा बच्चा भी इस बात को जान सकता है, इसके लिए बड़ा दार्शनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम इस सृष्टि को देखते हैं तो सृष्टि में सब कुछ ठीक ठाक अपने समय पे चल रहा है। हमने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया होगा या कभी हमने ऐसे सुना नहीं होगा भी, इतिहास में ऐसे कभी घटना हुई जब सूर्य का उदय नहीं हुआ या सूर्य उदित नहीं हुआ, सूर्य भूल गया उदित होने के लिए या अस्त होने के लिए भूल गया, या कोई गलती हो गई, किधर रास्ते में ट्रैफिक जाम में अटक गया, वो नहीं आ सका उदित होने के लिए, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसे कभी नहीं सुनाई देते। सही समय पे सूर्य उदित होता है, अस्त होता है, जितने में नक्षत्र हैं अपने समय पे उदित होते हैं, अस्त होते हैं, चांद और अन्य जो नक्षत्र हैं वो भी अपने रास्ते में ठीक ठाक चलते हैं, ऋतुएं भी एक के बाद एक अपने समय पर आती हैं, सारी चीजें ये ब्रह्मांड के भीतर निसर्ग में सही तरह से चल रही हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यदि हमने किसी को अपने बिना कोई ताकत के हमने रखा तो नीचे गिर जाएगा, बिखर जाएगा, जैसे मिट्टी है, हम मिट्टी को ऊपर उठाते हैं और हमारी मुट्ठी में जब तक मिट्टी रहता है वो रहता है, यदि हमने मुट्ठी से छोड़ दिया तो मिट्टी नीचे गिर जाएगा, मिट्टी बिखर जाएगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान वो मुट्ठी के समान है और सारी सृष्टि वो मिट्टी के समान है, क्योंकि भगवान ने धारण किया हुआ है सबको, इसलिए वो मिट्टी अभी तक है उसमें। गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि हर एक लोक में, हर एक ग्रह में मैं प्रवेश करता हूँ, मेरी ओजस शक्ति के द्वारा मैं हर एक ग्रह और लोक को धारण कर लेता हूँ। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के बल से, उनकी शक्ति से ये सारे नक्षत्र, ग्रह, ये सारे ब्रह्मांड अपने अपने जगह में स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये तो एक ब्रह्मांड की बात है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और ऐसे बताया जाता है कि हर एक ब्रह्मांड के सबसे निम्न भाग में अनंत शेष है, जिन्होंने सारे ब्रह्मांड के भुवनों को धारण किया है अपने फनों पे, और अनंत शेष के रूप हैं जिन्होंने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भी अपने फनों में धारण किया हुआ है। और हमारे लिए जब हम एक पत्थर भी उठाते हैं, आप में से जो सेवा करते हैं पत्थर उठाने का, आप जानते हैं एक पत्थर कितना भारी होता है, कितना कष्ट लगता है, ताकत लगती है एक पत्थर को उठाने के लिए। और ये तो एक छोटा पत्थर है। और जब भगवान गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, ये तो चमत्कार है ही, लेकिन हमारे दृष्टि से चमत्कार है, क्योंकि हमारे लिए जब एक पत्थर उठाना मुश्किल है तो एक पहाड़ उठाना तो असंभव है। इसलिए हम बोलते हैं कि भगवान ने चमत्कार किया, क्योंकि ये हमारे दृष्टि से, हमारे शक्ति के तुलना से ये चमत्कार है, परंतु भगवान की शक्ति की तुलना से ये कोई चमत्कार नहीं है। भगवान के लिए एक पहाड़ उठाना कौन सी बड़ी बात है, जब अनंत शेष जो कि भगवान के अंश के अंश के अंश है, कला के कला है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने फणों पर धारण करते हैं, और हर एक ब्रह्मांड जो कि इतना भारी हमको लगता है, उनको एक मस्टर्ड को क्या कहते हैं, राई के बीज के समान उनको लगता है भारी। राई का बीज कितना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, उसका क्या कोई वजन होता है? हम जब एक बीज को धारण करते हैं हमारे मुट्ठी में, हमको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो एक पत्थर रखेंगे हाथ में तो बहुत तकलीफ है। तो अनंत शेष को हर एक ब्रह्मांड केवल एक राय के बीज के समान, सरसों का बीज है, सरसों बोलते हैं, सरसों के बीज के समान उनको लगता है। तो ऐसे अनंत शेष ने सारे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। और ये जो हम आजकल विज्ञान में पढ़ते हैं, वैज्ञानिक बताते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ये गुरुत्वाकर्षण क्या है, ये संकर्षण या अनंत शेष की शक्ति है, ये ओजस शक्ति है भगवान की, जिससे कि सब चीज को भगवान धारण करके रखे हुए हैं, जिससे कि हर एक ग्रह हर एक नक्षत्र अपने अपनी कक्षा में चलता है, कोई इधर उधर भटक नहीं जाता है, पथभ्रष्ट नहीं हो जाता है। तो ये सब भगवान की योजना से हो रहा है। तो भगवान हैं इसलिए ये सब अपने अपने जगह में सब ठीक चल रहा है। तो यदि कोई पूछे कि हम तो भगवान को देख नहीं सकते हैं, तो क्या प्रमाण है कि भगवान हैं? तो गीता में ही भगवान ने मोतियों के माला के उदाहरण से हमको बतलाया है। तो हम इस सारे ब्रह्मांड को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं, वो समस्त चीजों के आधार हैं, बुनियाद हैं। तो हालांकि उनको हमारी आंखों से हम इस समय नहीं देख सकते हैं, फिर भी हम जान सकते हैं कि भगवान हैं। तो ये भगवान प्रकट होते हैं, और जब मनुष्य समाज में आते हैं तो हमारे जैसे ही कार्य करने लगते हैं। और इसलिए व्यक्ति जो अज्ञानी होता है, जो माया ग्रस्त होता है, वो सोचता है कि भगवान भी हमारी तरह एक आदमी है। मम भूत महेश्वरम, वो नहीं जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और ईश्वर है। इसलिए श्री कृष्ण और जगह भी बताते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, अब जो साधारण लोग हैं वो मुझ भगवान को नहीं पहचानते हैं, क्योंकि वो मेरी माया शक्ति से उनकी दृष्टि आवृत होती है, योग माया समावृत है। इसलिए नाहम प्रकाश है सर्वस्य, तो लोग, साधारण लोग मुझे जान नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि मेरी माया के पर्दा से ढका हुआ है। माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञान धोक्षजम अव्ययम्। कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है भगवान कृष्ण से, माया जवनिका अच्छन्नम, कि माया का जो पर्दा है वो ऐसे अज्ञानी लोगों के आंखों के सामने आता है, उनकी दृष्टि ढक लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान को ढक नहीं सकता है माया शक्ति। हमारी दृष्टि को ढक लेती है माया शक्ति। जैसे बादल आते हैं और बादल के कारण हम सूर्य को देख नहीं सकते, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बादल सूर्य को ढक रहे हैं। सूर्य तो बहुत बड़ा है और बादल छोटा है। इतना छोटा सा बादल इतने बड़े सूर्य को कैसे ढक सकता है? बादल केवल हमारे दृष्टि को ढक रहा है। हमारी दृष्टि छोटी है, हम छोटे हैं, पृथ्वी छोटी है, इसलिए हमारे पृथ्वी के दृष्टिकोण से वो हम सूरज को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि बादल बीच में आ रहा है। बादल तो हमारे बहुत करीब है और सूरज तो बहुत दूर है, तो बादल सूरज को नहीं ढक रहा है, बादल हमारे दृष्टि को ढक रहा है। ठीक उसी प्रकार से माया हमारे दृष्टि को ढक रही है, भगवान को नहीं ढक रही। भगवान कभी नहीं ढके जा सकते। हम छोटे हैं इसलिए भगवान की माया शक्ति हमारे दृष्टि को ढक लेती है। इसी बात को भगवान कह रहे हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम न अभिजानाति। उसी बात को कह रहे हैं, ऐसे मूढ़ लोग इसलिए मुझे नहीं जानते हैं। लोको माम अजम अव्ययम्, लोग नहीं जानते हैं कि मैं अजन्मा हूँ अज, और मैं अव्यय हूँ अक्षय हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं होता है। तो ये सब लोग नहीं जानते हैं, माया शक्ति के द्वारा उनकी दृष्टि आवृत हो चुकी है इसके लिए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को व्यक्ति नहीं जान लेता है, इसलिए कुंती महारानी उस श्लोक में बोलते हैं, माया जवनी काच्छन्नम अज्ञा धोक्षजम अज्ञा अधोक्षज अव्ययम्। अधोक्षज जो है का मतलब है कृष्ण, जो हमारे इंद्रियों के परे हैं, इसलिए हम उनको समझ नहीं पाते हमारी स्थूल इंद्रियों से, हमारे ग्राह्य इंद्रियों से। सेवोन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदः, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय ही। हमारे ग्राह्य इंद्रियों से, हमारे इन स्थूल भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन जब हम सेवा करते हैं भगवान की, और ये सेवा हमारी जिह्वा से शुरू होती है, भगवान के नाम उच्चारण से, प्रसाद ग्रहण से, तब धीरे धीरे से भगवान हमारे हृदय में प्रत्यक्ष रूप से स्फुरित हो जाएंगे, तब हम भगवान को जान पाएंगे, वो माया का पर्दा हट जाएगा और दिव्य चक्षु हमको मिल जाएंगे, जिसके कारण हम भगवान को तत्वतः जान पाएंगे। और ऐसे तत्वतः जानने से क्या लाभ है? जैसे प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, केवल कृष्ण को तत्वतः जानने से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, इस संसार से हम मुक्त हो सकते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और मेरे कर्म के दिव्यता को, अलौकिकता को समझ सकता है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, बल्कि वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते हैं, केवल उनके श्रद्धालु भक्त उनको जान सकते हैं, जिनके आंख भक्ति के अंजन से जिनके आंखों में लेपन है भक्ति के अंजन का, वही लोग कृष्ण को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, दूसरे लोग नहीं जान सकते। दूसरे लोग उनको तरह तरह के धारणाएं रखते हैं उनके प्रति। कोई कहता है कि ये तो मनुष्य है, कोई कहता है ये केवल निराकार है जो उन्होंने साकार रूप लिया है, कोई कहता है ये तो एक दंत कथा है, कृष्ण थे ही नहीं। परंतु जिनकी आंखें सही हैं, जिनकी दृष्टि दिव्य है, वो भगवान को सही रूप से जानते हैं, और ऐसे सही रूप से जानने के बाद भगवान की लीला में प्रविष्ट होकर उनका संग करते हैं, उनके साथ लीला करते हैं।
इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहरो कृतपुण्यपुञ्जा।
श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में कृष्ण के साथ जो ग्वाल बाल हैं उनके सौभाग्य का वर्णन है। यहाँ कहा गया है उनके बारे में कि कृष्ण के बारे में कि कृष्ण ऐसे हैं कि देखिए इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या। थोड़े ऐसे संत होते हैं, ऋषि गण होते हैं, जो श्री कृष्ण को या परम सत्य को निराकार ब्रह्म मानते हैं और ऐसे ब्रह्म सुख में वो रमण करना चाहते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो मानते हैं कि निराकार से भगवान साकार हुए, परंतु भगवान इस तथ्य का खंडन करते हैं। वो कहते हैं ये ठीक नहीं है। कौन सा श्लोक है वो? जिसमें वो कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं निराकार हूँ और निराकार से मैंने एक रूप धारण किया है। हाँ, फिर पूरा श्लोक बोलो, सातवां अध्याय 24वां श्लोक खोल के बोलो पूरा श्लोक 24वां। फिर से बोलिए श्लोक। क्या शब्द भेद करके इसका अर्थ बोलिए?
नहीं,
समझा कर।
अव्यक्तम अप्रकाशित व्यक्तिम व्यक्ति आपन्नम प्राप्त हुए मन्यन्ते सोचता है माम मुझको अवधय विकम्बधिमान लोग होते हैं परम परम भावम अस्तित्व अजानंतः
नहीं जानते
मम मेरा अव्ययम अविनश्वर अनुत्तमम
सूक्ष्म। तो इसका मतलब है कि भगवान कह रहे हैं अव्यक्तम व्यक्ति, मैं अव्यक्त से एक व्यक्ति बना, आपन्नम मतलब अव्यक्त से एक व्यक्तित्व को मैंने प्राप्त किया, आपन्नम मतलब प्राप्त करना, अव्यक्त से जहां मेरा कोई आकार नहीं था, कोई रूप नहीं, कुछ नहीं, ऐसे अवस्था से अव्यक्तम व्यक्तिम मैंने व्यक्तित्व एक रूप को स्वीकार किया, मन्यन्ते ऐसा जो मानते हैं माम मेरे बारे में अबुद्धयः, वो अल्प बुद्धि वाले हैं, अल्प बुद्धि नहीं बल्कि बुद्धिहीन है। क्यों? वही बात को फिर से भगवान कहते हैं परम भावम अजानंतो। इसी बात को बार बार भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरे परम भाव को ये लोग नहीं जानते हैं। ममाव्ययम अनुत्तमम मम अव्ययम कि मैं अविनाशी हूँ और मैं आध्यात्मिक और सूक्ष्म हूँ, इस बात को लोग नहीं जानते हैं। तो इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, तो ऐसे कई लोग हैं जो परम सत्य को निराकार समझ के उस सुख में रमण करते हैं, निराकार के सुख में। फिर मायाश्रितानाम नरदारकेण, ऐसे जो माया के आश्रित लोग होते हैं जो भगवान को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, उनकी भगवत्ता को पहचानते नहीं हैं, सोचते ये हमारे जैसे ही आदमी दिखता है, ये भी एक आदमी है बस, जैसे जैन धर्म है वो लोग सोचते हैं कि कृष्ण नरक में है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं इन्होंने ऐसे कर्म किए तो कर्म के अनुसार कृष्ण नरक में है। जो वास्तव में जैन धर्म से अच्छी तरह से परिचित है आप उसको पूछे वो ऐसे बोलेंगे। क्यों सोचते हैं ऐसे? वो कर्म सिद्धांत के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं जैन धर्म वाले लोग, तो उनके लिए कर्म ही प्रधान है, भगवान प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है, और उनके धर्म में वो लोग भगवान को नहीं मानते हैं। ये नास्तिक धर्म है, बौद्ध धर्म जैन धर्म। तो उनके मत में कि जैसे हम कर्म करते हैं उनका फल हमको मिलके ही रहेगा, तो कृष्ण ने झूठ बोला, कृष्ण ने झूठ बोलवाया, कृष्ण ने ऐसे किया वैसे किया, है ना, कृष्ण ने बहुत गलत काम किए इसलिए उनको वो कर्मों का फल मिलेगा, वो नरक में जाएंगे। तो वही बात हो जाती है कि कृष्ण को कृष्ण कौन है ये नहीं समझते, इसलिए नियम उनके ऊपर लागू करते हैं। जैसे राजा है देश का, वो कहीं जाता है और फिर कोई व्यक्ति कहेगा अरे राजा ने ऐसे नियम तोड़ा, राजा को दंड दे दो। अरे राजा ने नियम बनाए हैं, राजा के ऊपर क्या नियम लागू होंगे। उसी प्रकार से कर्म के सिद्धांत आप मानते हो, लेकिन ये सिद्धांत ने बनाया किसने, ये नियम को बनाया किसने कि ऐसे कर्म करोगे तो ऐसे फल मिलेगा। और बनाने के बाद ये कौन देखता है कि जो ऐसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलेगा, कौन देखता है, सब अपने आप हो रहा है, कोई तो कर रहा होगा, इसका व्यवस्थापन कर रहा होगा। तो लोग इसको नहीं जानते हैं, तो कृष्ण तत्व को नहीं जानते इसलिए कृष्ण लीला को गलत समझते हैं। इसलिए प्रवचन के पहले भी हम इसी बात को बोल रहे थे, सबसे पहले व्यक्ति को समझना चाहिए, उसके पद को, ऐश्वर्य को, शक्ति को, फिर उसके कार्यकलापों को समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये लोग कृष्ण तत्व नहीं समझते हैं इसलिए कृष्ण लीला को नहीं समझते कभी, और सोचते हैं कि कृष्ण भी एक साधारण व्यक्ति है, इसलिए कृष्ण को भौतिक शक्ति के नियमों के भीतर खींच लेना चाहते हैं। जबकि कृष्ण कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौंतेय जगत विपरिवर्तते। वो कहते हैं कि ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चल रही है सदैव, कभी भगवान प्रकृति के अधीन नहीं होते हैं, सदैव प्रकृति भगवान के अधीन होती है, भगवान के अध्यक्षता में प्रकृति हमेशा रहती है। छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, भगवान के छाया जैसे ये प्रकृति चलती है। जब हम धूप में जाते हैं और हमारा हाथ लगाते हैं, छाया दिखती है उंगलियों की, तो जैसे हम उंगलियां हिलाते हैं वैसे छाया हिलती है। उसी प्रकार से भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी ये माया शक्ति चलती है। माया शक्ति भगवान की स्वतंत्र नहीं है, भगवान की शक्ति है, वो हमेशा भगवान पर निर्भर होती है। तो इसलिए भगवान कभी भी माया के अधीन नहीं हो सकते, तो कर्म सिद्धांत उन पे लागू नहीं हो सकता है। तो जो लोग माया के अधीन है वो भगवान को साधारण व्यक्ति समझते हैं, माया श्रितानाम नरधारकेण। साथ साथ में जो लोग ऐसे हैं जो भगवान को मानते हैं, वो भगवान को एक परम उनका आराध्य देव मानते हैं, परंतु ये जो ग्वाल बाल हैं जो कृष्ण के साथ वृंदावन में लीला कर रहे होते हैं, उनकी क्या परिस्थिति है। साकम विजहरु कृत पुण्य पुंजा, ये कृष्ण के साथ खेल रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ढेर सारे पाप की पूंजी एकत्र कर ली है। तो ऐसे परम सत्य के को केवल अपना मित्र समझना और मित्र समझकर उसके साथ ऐसे क्रीड़ा आदि करना, ये भावना को प्राप्त करने के लिए, ये सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए कितने लाखों लाखों जन्मों के भक्ति और तपस्या और पुण्य चाहिए। तो ये गुणगान हो रहा है कृष्ण के ग्वालबाल मित्रों का। तो कहने का मतलब है कि अपने अपने भाव के अनुसार लोग कृष्ण को अलग अलग देखेंगे। जो माया के आश्रित हैं वो कृष्ण को एक तरह से देखेंगे, जो माया से मुक्त होकर भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं वो भगवान को तत्वतः जान लेते हैं, और तत्वतः जानने से हम भगवान के धाम में लौट के जा सकते हैं। जब तक हम भगवान को नहीं जानेंगे, उनके तत्व को नहीं जानेंगे, लीला को नहीं समझेंगे, जब तक लीला को समझेंगे नहीं तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे उन लीलाओं में। केवल इस भक्ति के पद्धति से हम भगवान को जान सकते हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। कृष्ण फिर से बताते हैं 11वें अध्याय में कि हे अर्जुन, केवल भक्ति करने से ही तुम मुझे जान पाओगे, मुझ भगवान को जान पाओगे, और जब तुम जानोगे ज्ञातुम, तब मुझे देख पाओगे द्रष्टुम। और ऐसे जानने के और देखने के बाद फिर प्रविष्टुम च, फिर मेरे धाम में, मेरे लीला में तुम प्रविष्ट हो जाओगे। तो ये भी हमारी पद्धति है, साधन भक्ति करते करते, भगवान के बारे में सुनते सुनते, बोलते बोलते हम उनको जान जाएंगे, जानने के बाद उनको देखने के लिए योग्य हो जाएंगे, योग देखने के लिए योग्य होने के बाद जब प्राण त्यागने का समय आएगा तब उनके धाम में और उनकी लीला में प्रवेश करने के लिए योग्य हो जाएंगे। ये सारी चीजें संभव है केवल भक्ति से और अन्य किसी भी पद्धति से नहीं। तो भक्ति से व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण करता है कृष्ण तत्व और कृष्ण लीला के बारे में, इसलिए वो सही तरह से कृष्ण तत्व कृष्ण लीला जान लेता है। प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्टीकरण करते हैं कि भगवान कोई पद नहीं है, कोई किसी मतदान में या चुनाव में भगवान को चुन के आते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हम देखते हैं संसार में किसी को मंत्री बनना है तो मतदान में, चुनाव में जीत के आना पड़ता है, और चुनाव जीतने के लिए आजकल लोग क्या नहीं करते हैं, है ना। हमने सुना है कि लोग गांव-गांव में जाके शराब भी बांटते हैं गाँव वालों को कि ये शराब का बोतल लो, हमको तुम वोट दे दो। तो लोग क्या नहीं करते हैं, पैसा बांटते हैं, हेरा फेरी करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं, अनैतिक चीज़ें करते हैं केवल चुनाव जीत कर एक नेता बनने के लिए। उनको नहीं पता है कि प्रजा का जो पाप है उसका एक छठा भाग उनके सर पे आए। तो आप कल्पना कीजिए, प्रजा तो पाप कर ही रही है और आप उनको शराब आदि देकर और पाप में प्रेरित कर रहे हो, और उनके पाप जो है वो आपके सर पे आने वाले हैं, तो आपका क्या होने वाला है इस जन्म में, ठीक है, लेकिन अगले आने वाले जन्मों में भी क्या होना है, नरक में ही जाना है उनको। तो आजकल ऐसे गलत कार्यों से लोगों को प्रेरित किया जाता है, तो किसी न किसी तरह से वो व्यक्ति ये न किन प्रकार मंत्री पद को प्राप्त कर लेता है। परंतु भगवान ऐसा नहीं है, किसी धन से, प्रलोभन से, या तपस्या से, ऐश्वर्य से, बुद्धि से, सौंदर्य से, कोई योग्यता से कोई व्यक्ति भगवान बन नहीं सकता है। भगवान भगवान है, और जो भगवान नहीं है वो भगवान नहीं है, वो कभी भगवान बन नहीं सकते। जो भगवान नहीं है वो कभी भगवान नहीं बन सकते, और जो भगवान है वो हमेशा हर अवस्था में सर्वथा भगवान रहेंगे। इसलिए यहां प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि कृष्ण के जन्म से ही उन्होंने अपनी दिव्यता का प्रदर्शन किया। हम अनेक बार सुनते हैं बच्चों का हॉस्पिटल में या घर में जन्म होता है, लेकिन ऐसे कितने बच्चों के बारे में हम सुनते हैं जिन्होंने चार हाथ लेके जन्म लिया है, या जिन्होंने जो जन्म लिया तो पूरे बाल थे उनके, या कपड़े पहनकर जिन्होंने जन्म लिया, या तरह तरह के आभूषण से शरीर उनका था, ढका हुआ था। ऐसे कभी बच्चों के बारे में हम सुनते नहीं हैं, लेकिन श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो उनके शरीर में बाल थे, उनके शरीर में वस्त्र थे, आभूषण थे, और इतना ही नहीं, वो अपने माता पिता से बोलने लगे। साधारण बच्चे जब बाहर आते हैं तो कैसे आते हैं, रोते रोते आते हैं, और साधारण लोग जब संसार से जाते हैं कैसे जाते हैं, रोते रोते जाते हैं, और जन्म और मृत्यु के बीच में भी कैसे रहते हैं,
रोते रोते,
है ना। लेकिन श्री कृष्ण जब प्रकट हुए कैसे प्रकट हुए, हंसते हंसते, बीच में भी रहे हंसते हंसते, जाते समय भी हंसते हंसते, और हम सबको प्रसन्नता का पथ देकर चले गए। तो श्री कृष्ण जन्म से ही अपने दिव्यता को दिखा लिए और फिर उनका स्थानांतरण किया गया। और जब वो चले गए गोकुल में तो उस समय उन्होंने सबसे, जब वो एक महीने के भी नहीं थे, थोड़े दिनों के थे, तो उन्होंने पूतना का वध किया। पूतना एक भीषण राक्षसी थी, इतनी विशाल राक्षसी कि उसकी शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एक सुंदर तरुणी का रूप धारण करके पूतना आई थी, अपने स्तनों पे कालकूट विष लगा के, जैसे हम उस दिन चर्चा कर रहे थे। और भगवान कृष्ण ने ऐसे विशाल राक्षसी का हत्या कर लिया। तो इसके बाद भी श्री कृष्ण ने अपने बाल्यावस्था में भी अनेक ऐसे बड़े बड़े असुरों का वध किया। इसका मतलब है कि बाल्य अवस्था में भी भगवान की शक्ति, भगवान की बुद्धि, उनकी योग्यता असीमित थी, परिपूर्ण थी। ऐसा नहीं है कि वो छोटे बच्चे थे इसलिए अबला थे, उनकी अल्प बुद्धि थी, अभी तक परिपक्व नहीं हुए थे, ऐसा नहीं है। मनुष्य समाज में देखा जाता है, या किसी भी समाज में, कि जब छोटा बच्चा होता है तो बहुत कमज़ोर होता है, बहुत छोटा होता है, उसकी बुद्धि भी इतनी विकसित नहीं होती है और इतना समझदार नहीं होता है। धीरे 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 से पालन पोषण के बाद, शिक्षण आदि देने के बाद थोड़ा समझदार होता है जब बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद भी पूरी तरह से परिपक्व होने के लिए बहुत समय लगता है। इसलिए फिर आगे जब पूरी तरह से परिपक्व होने को आता है तब संसार छोड़ने का समय भी आ जाता है। लेकिन भगवान के लिए ऐसे नहीं होता। भगवान की शक्ति में, बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो बाल अवस्था में हो, तरुण अवस्था में हो, चाहे वो पशु समाज में प्रकट हो जाए, मनुष्य समाज में प्रकट हो जाए, भगवान की बुद्धि शक्ति उतनी ही रहती है, परिपूर्ण और असीमित। हर अवस्था में सर्वदा सर्वथा भगवान भगवान ही रहते हैं और इस बात को सिद्ध करते हैं अपने लीलाओं के द्वारा। तो ऐसे श्री भगवान के बारे में जो बलराम के साथ, उनके बड़े भाई के साथ आए थे, उनके बारे में ही जानना चाहते हैं कि वही श्री कृष्ण जो कि साधारण मनुष्य की तरह दिख रहे थे, उनके कार्यों के बारे में हम सुनना चाहते हैं। यहाँ शब्दों का प्रयोग किया गया है, गूढ़ कपट मानुष, मतलब कि दिखने में वो मनुष्य थे, उन्होंने वेश ऐसे धारण किया था कि मानो वो एक साधारण मनुष्य हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये इनका नाटक है, मनुष्य की तरह वो नाटक कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं एक दृष्टि से, परंतु ये दुनियादारी की कपट नहीं है, मतलब वो एक लीला कर रहे हैं। जैसे कभी एक साधारण आदमी नाटक में भाग लेता है और वो राजा बन जाता है, राजा का वेश धारण करके राजा की तरह चलता फिरता है मंच के ऊपर, तो उसी तरह से श्री कृष्ण भी यह आके एक साधारण मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, मानो कि वो माता यशोदा के ऊपर निर्भर है, मानो कि वो अपने मित्रों से डरते हैं। जब मित्र कहते हैं कि तुम अभी घर जाओगे, माता बुला रही हैं भोजन के लिए, तुम अभी घर जाओगे आधा खेल छोड़ के, तो अगली बार हम तुमको नहीं लेंगे खेल में, तो डर के मारे रह जाते हैं, वापस नहीं जाते हैं। ऐसे कृष्ण जिनसे, जैसे हम पहले थोड़े दिन पहले पढ़ रहे थे, मूर्तिमान भय भी डरता है, वो अपने मित्रों से डर रहे हैं, अपनी माँ की छड़ी से डर रहे हैं। तो ऐसे लीला भगवान करते हैं, इनको समझना केवल भक्ति से ही संभव है। कभी कभी निकटता के कारण ही लोग भूल जाते हैं। अर्जुन नहीं जानते थे कि भगवान है, जब भगवान ने अपना परिचय दे दिया तब जाके उनको पता चला। वैसे अर्जुन ने भी पहले सुना था इसके बारे में, परंतु अपने सख्य स्नेह के कारण वो इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दे। जब सारे पांडव वनवास में थे तो वहां पर नारद मुनि उनके पास भी आए थे और अनेक उनके जो ऋषिगण थे, उनके कुल गुरु धौम्य ऋषि आदि थे उनके साथ में। तो अचानक उस सभा में, जबकि युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ पौराणिक कथाएं सुन रहे थे ऋषियों के द्वारा, वहां आकाश पथ से चलते हुए मार्कंडेय ऋषि चले आए। मार्कंडेय ऋषि का नाम आपने सुना होगा, वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? उनकी लंबी आयु के लिए। वो सृष्टि के पहले भी थे, इसके पूर्व जो सृष्टि थी उसमें भी वो थे, प्रलय के बाद भी वो रहे। इतनी लंबी आयु इनकी, उन सृष्टि से पहले जो भी कुछ हुआ है ब्रह्मा जी के इस दिवस में वो सब जानते हैं, इतनी लंबी आयु वाले भगवान ऋषि। तो जब वो आए तो सभी लोग खड़े हो गए, नारद मुनि भी खड़े हो गए। अरे मार्कंडेय ऋषि आप आए हैं, आइए, स्वागत है आपका, बैठिए। तो जैसे जंगल में संभव है वैसे उनका स्वागत किया, क्या कंदमूल देके स्वागत किया, और क्या कर सकते हैं जंगल में। और उनको कुश आदि का आसन दिया बैठने के लिए, और जब वो बैठे थे फिर प्रश्न किए उनसे कि कृपया हमें कोई पौराणिक कथाएं सुनाइए। ऐसे उन्होंने कई पौराणिक कथाएं सुनाई। फिर युधिष्ठिर महाराज ने उनसे अनेक प्रश्न किए, जैसे भाग्य के बारे में, कर्मों के बारे में, कि जब हम कर्म करते हैं तो क्या इसी जन्म में हमारे कर्म के फल मिलते हैं या आने वाले जन्मों में मिलते हैं, इसके बारे में सत्य क्या है। और मार्कंडेय ऋषि ने अनेक ऐसे उत्तर दिए। जब पौराणिक कथाओं को सुनाया और कृष्ण के बारे में वर्णन कर रहे थे, परम सत्य के बारे में, तो परम सत्य का वर्णन करते करते अंत में जब मार्कंडेय ऋषि को जाने का समय हुआ, फिर कथा विराम करते समय उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर महाराज, जिस भगवान श्री हरि का वर्णन मैंने किया है अभी तक इन समस्त पौराणिक कथाओं के द्वारा, वही श्री हरि यहाँ आपके सामने खड़े हैं। ये देखो, ये है, ये श्री कृष्ण है। आप इनको अपना मित्र समझ रहे हो और आपका चचेरा भाई समझ रहे हो, परंतु ये हैं परम सत्य, ये भगवान हैं, ये अनंत जो ब्रह्मांड हैं उनके स्वामी हैं, इनके ही उदर में सारे ब्रह्मांड हैं। मार्कंडेय ऋषि ने अपने भी दिव्य अनुभव भी सुनाए थे। तो यही है, आप पहचानते नहीं हो, आप सोच रहे हो कि केवल आपके भाई हैं, आपके मित्र हैं, परंतु ये परम सत्य है, कभी संदेह नहीं करना युधिष्ठिर। तो सभी लोग आश्चर्यचकित होकर कृष्ण की ओर देखते हैं और कृष्ण तो हंस देते हैं। कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं, वो भी क्या बोलेंगे, मार्कंडेय ऋषि को ना थोड़ी बोल सकते हैं। तो इस तरह से दो कारण से लोग कृष्ण को नहीं जानते हैं, एक है महामाया और दूसरी है योग माया। जो अज्ञान में होते हैं, जो भगवान के विरोध में होते हैं, जो भगवान से ईर्ष्या और द्वेष करते हैं, जो स्वतंत्र होकर भोग करना चाहते हैं, वो महामाया के अधीन है। और महामाया के अधीन होकर वो पूरी तरह से अज्ञान में पड़ जाते हैं, घोर अंधकार में। और ऐसे अंधकार में अवजानन्ति माम मूढ़ा, तो वो मूढ़ बन जाते हैं और कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण के परम भाव को नहीं जानते। दूसरी ओर ऐसे प्रेमी भक्त हैं कृष्ण के, जो इतने तीव्रता से शुद्ध प्रेम करते हैं श्री कृष्ण को कि उस तीव्रता में वो कृष्ण के भगवत्ता को भूल जाते हैं। भगवान की जो योग माया शक्ति होती है वो उनके इस भाव को, इस ज्ञान को ढक लेती है कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि यदि माता यशोदा सोचती कि कृष्ण भगवान है तो उसके वात्सल्य प्रेम में एक शिथिलता आ जाती, एक विघ्न आ जाता। वो कृष्ण को अपना पुत्र मान के कैसे प्रेम कर सकती थी यदि वो सोचती कि कृष्ण भगवान है। तो माता यशोदा और नंद महाराज जैसे प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं तात्पर्य में, ये नहीं सोचते थे कि श्री कृष्ण भगवान है। यहाँ लिखा है इतने पर भी अपने योग आवरण के कारण, योग आवरण मतलब यहाँ योग माया की बात है, योग आवरण के कारण वे अपने तथा कथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते। तो उनके वात्सल्य स्नेह को बनाए रखने के लिए कृष्ण के लिए भी और उनके लिए भी योग माया शक्ति द्वारा उनको ये विस्मृति दी जाती थी कि ये भगवान है। और ऐसे भगवान के भगवत्ता को भूलकर उनको वो केवल अपना पुत्र मान लेते थे। और ऐसे केवल पुत्र मान के पुत्र स्नेह का जो मिठास है उसका अनुभव कर लेते थे। इसका रस माता पिता भी लेना चाहते थे और कृष्ण भी लेना चाहते थे। तो दोनों इस वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान करके संतुष्ट होते रहते थे। तो वृंदावन के जो प्रेमी भक्त हैं, द्वारका के प्रेमी भक्त हैं, जो कृष्ण को भगवान कह के नहीं जानते हैं, वो योग माया के अंतर्गत भगवान के भगवत्ता को भूल जाते हैं। और इन दो श्रेणियों के बीच में कौन है? हम है, हम सब है। पहले श्रेणी से हम निकले हैं, निकलने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरे श्रेणी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे जीवन की सफलता क्या है कि एक प्रकार के विस्मृति से दूसरे प्रकार की विस्मृति में प्रगति करना, प्रवेश करना। एक प्रकार की विस्मृति कौन सी है? महामाया के अंतर्गत अज्ञान के अंधकार के कारण कृष्ण भगवान है इस बात को नहीं जानना। और दूसरा विस्मृति है अति स्नेह, कृष्ण प्रेम के सर्वोच्च स्थिति में अति स्नेह के कारण ये भूल जाना कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण को अपना पुत्र, अपना मित्र, अपना प्रेमी आदि समझना। ठीक है, तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो जब हम ये कृष्ण बलराम आदि के बारे में पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का उद्देश्य यही है। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न आदि है? पूरी तरह से जानना चाहिए, जैसे आचार्यों ने वर्णन किया है, जैसे शास्त्रों में बताया है, जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है यहाँ पे कि कैसे श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उनके बाल थे, वस्त्र थे, चार हाथ थे, बोल रहे थे, बचपन से ही वो भगवान थे, माँ के गर्भ में जब थे तब भी वो भगवान थे। और भगवान कैसे प्रकट होते हैं, जैसे हमारा जन्म होता है वैसे नहीं होता। इस दुनिया में जब जन्म होता है पुरुष स्त्री के संग से बच्चा उत्पन्न होता है, परंतु भगवान के लिए ऐसे नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जान लेना इस संबंध में जितना भी ज्ञान है, जैसे भागवत में और गीता में, इनको हमें जान लेना चाहिए। उसी प्रकार से भगवान की लीलाओं को भी हमें जान लेना चाहिए कि कैसे भगवान किसी कर्म के सिद्धांत से बंधे हुए नहीं हैं, न ही भगवान किसी हमारे लिए जो लागू होते हैं नीति के नियम, न उनके ऊपर भी वो लागू नहीं होते हैं। हम बोलते भगवान ने झूठ क्यों बोला, तो कोई लोग बोलेंगे अरे बड़ा इसका विरोध करेंगे। ये झूठ और सत्य क्या, जो भी भगवान बोलते हैं वो करते हैं वो सत्य ही है। तो न केवल भगवान के जन्म को हमें समझना है, भगवान के कर्मों को अर्थात उनकी लीलाओं को भी समझना उतना ही आवश्यक है। जो सुनते हैं न केवल पढ़ना, भक्तों के संग में आकर प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से इस ज्ञान को स्वीकार करना और उस ज्ञान के अनुसार हमारे जीवन में आचरण करना, उस पद्धति को स्वीकार करना जिससे न केवल बौद्धिक दृष्टि से हम इस तत्व को जान सकें परंतु इसका साक्षात्कार भी हो सके। हरे कृष्णा प्रभु। प्रश्न ये है कि उस श्लोक में बताया गया था कि बहुत सारे ढेर से पुण्य एकत्र करके वो भगवान के साथ लीला करने के लिए पात्र हो गए, लेकिन दूसरी जगह ये भी बताया गया है कि जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते, कि भगवान की भक्ति पुण्यों को करने से प्राप्त नहीं होता है। तो ये एक प्रकार का विरोधाभास लगता है, कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। ये प्रश्न है, इसका उत्तर ये है कि जिस सुकृति या पुण्य की बात यहाँ की गई है वो भौतिक पुण्य नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि तीन प्रकार के सुकृति या पुण्य होते हैं। सुकृति, कृति मतलब कोई विशेष कार्य, सु मतलब कोई अच्छे विशेष कार्य। एक होते हैं कर्मोन्मुखी सुकृति जो साधारण भौतिक पुण्य होते हैं जिससे कोई भक्ति का संबंध नहीं है, आध्यात्मिकता का संबंध नहीं है, उससे पुण्य प्राप्त होता है। मतलब हमको इस भौतिक सृष्टि में ही पुनर्जन्म मिलके एक अच्छी अवस्था प्राप्त होती है, जैसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति, अगले जन्म में ऐश्वर्य, सौंदर्य, बुद्धि, सुख, भौतिक सुख आदि, जैसे गरीबों को मदद करना और पेड़ लगाना, वृक्षारोपण करना, साधारण जनता के लिए कुएं खोद देना, पानी की व्यवस्था करना, जो कष्ट में पीड़ित हैं उनको कुछ सहायता करना, मरीजों को दवाई देना, ये सब चीज़ें हैं, ये सब पुण्य माने जाते हैं। ये कर्मोन्मुखी सुकृति है, इनसे हमें भौतिक स्तर का सुख और सुविधा प्राप्त हो सकता है। दूसरे प्रकार की सुकृति है ज्ञानोन्मुखी सुकृति, जो कि निराकारवादी आदि करते हैं, जो ज्ञानियों के संग में करके श्रवण कीर्तन आदि करने से जो एक वृत्ति उत्पन्न हो जाती है निराकार के प्रति आगे बढ़ने के लिए, वो है ज्ञानोन्मुखी सुकृति। जो ऐसे ज्ञानोन्मुखी सुकृति प्राप्त करता है वो स्वाभाविक रूप से निराकार के प्रति आकर्षित होता है उसके जीवन में। और तीसरा है भक्त्योन्मुखी सुकृति। भक्त्योन्मुखी सुकृति का मतलब है कि वो सुकृति जो भगवान कृष्ण की भक्ति से संबंधित है। जैसे इसके लिए उदाहरण दे सकते हैं, जैसे समझो हम कृष्ण प्रसाद किसी को बांट रहे हैं, उसको हो सकता है कि पता है कि कृष्ण प्रसाद है, वो बड़े सम्मान पूर्वक उस प्रसाद को लेके ग्रहण करेगा, उसको फायदा होगा, भले उसको ज्यादा श्रद्धा ना हो। कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये श्रद्धा, ये प्रसाद है, इसको केवल अच्छा भोजन समझ के वो मीठा प्रसाद है इसलिए वो ले रहे हैं, तो उनको भी फायदा होता है। जब भक्त लोग हरि नाम संकीर्तन करके सड़क पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग भगवान का नाम सुनते हैं, तो सुकृति हो जाती है, अज्ञात सुकृति, न जानते हुए भी उनको ये भक्ति की सुकृति मिल जाती है। जानबूझ के उन्होंने भक्ति किया नहीं है पर उनके कानों में नाम पड़ जाता है, उनको प्रसाद मिल जाता है, वो ले लेते हैं। तो ऐसे छोटे 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 कार्यों से कभी कृष्ण का नाम बुलाते हैं, किसी का नाम कृष्ण है, गोविंद है, अरे गोविंद इधर आओ, तो गोविंद कृष्ण ऐसे नाम बुला बुला कर ये अज्ञात सुकृति हो रही है। तो ऐसे तरह तरह के अज्ञात और ज्ञात सुकृति करके अनेक जन्मों से ये जब सुकृति पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है तो फिर व्यक्ति भक्तों का संग गंभीरता से करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके हृदय में एक मति या वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जब भक्तों के संग में वो कृष्ण के बारे में सुनता है वो आकर्षित हो जाता है और भगवान के शरणागत आ जाता है। तो यह भक्तोन्मुखी सुकृति। तो हम यहाँ जो भी जितने भी बैठे हैं हमें समझना चाहिए कि अनोक जन्मों के भक्तोन्मुखी सुकृति, अज्ञात सुकृति आदि कर करके अनेक जन्मों से अभी आज हम यहाँ सब बैठे हैं, वो अपूर्ण हुई, अभी पूर्ण करने के लिए एक अवसर हमको मिल रहा है। तो ऐसे करके हम साधन भक्ति में लग जाते हैं, साधन भक्ति में लग के फिर आगे भाव भक्ति और प्रेम भक्ति तक पहुंचना है। प्रेम भक्ति में पहुंचने के बाद भी तुरंत हम भगवान के धाम में नहीं चले जाते। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ये भौतिक सृष्टि में कहीं लीला करते हैं किसी भी ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड में भगवान की लीला में शामिल होने के लिए हमको एक अवसर दिया जाता है, और वहाँ जो भगवान के धाम से आए हुए पार्षद हैं उनके साथ में रह के प्रशिक्षण मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है। फिर जब पूरी तरह से हम तैयार हो जाते हैं 100%, तभी भगवान के धाम में हम जा सकते हैं। ये जो जिन ग्वाल बालों के बारे में ऐसे बोला जा रहा है वो ग्वाल बाल है जिन्होंने अनेक जन्मों से भक्ति करके पहले सुकृति कमाई, भक्ति उनमें की सुकृति, फिर साधन आदि भक्ति किया, साध्य अवस्था को प्राप्त किए, अभी भगवान का संग प्राप्त हुआ उनको। तो ये साधारण पुण्य की बात नहीं है, ये भक्ति के पुण्य की बात है। भक्ति केवल भक्ति से ही आ सकती है, भक्ति भक्ति के अलावा किसी चीज से उत्पन्न नहीं हो सकती, ना कर्म से ना ज्ञान से भक्ति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, ठीक है। प्रश्न ये है कि ऐसे बताया जाता है कि ब्रजवासी हैं वो कृष्ण को भगवान कह के नहीं जानते हैं, केवल उनके मित्र प्रेमी आदि करके जानते हैं, लेकिन गोपी गीत में गोपियाँ कृष्ण को भगवान कह के संबोधित करती हैं, वो जानती हैं, तो ये भी एक विरोधाभास लगता है। इसका उत्तर ये है कि हाँ, गोपियाँ जानती थी, परंतु ऐसे ज्ञान के बाद भी उनके माधुर्य प्रेम में तनिक भी फर्क नहीं पड़ा। यह है अंतर वृंदावन के निवासियों में और अन्य भक्तों में। जब माता देवकी और वसुदेव ने श्री कृष्ण को देखा, जबकि कृष्ण ने कंस का वध किया और साथ साथ बलराम के साथ उन्होंने चाणूर, मुष्टि, कोल्या, पीड़ आदि सबका वध कर दिया, तो वसुदेव देवकी के हृदय में एक चमत्कार की भावना जागृत हो गई और ऐसे विस्मित होकर वो सोचने लगे कि अरे ये तो भगवान है, ये हमारे पुत्र नहीं है। तो जैसे ही वो सोचने लगे तो उनके हृदय का जो वात्सल्य स्नेह है वो शिथिल हो गया, कमजोर हो गया और एक ऐश्वर्य भाव निर्माण हो गया। पहले तो वो अपने पुत्रों को आलिंगन करके चुमना चाहते थे, अभी एकदम अचानक अरे भगवान है, हम कैसे आलिंगन करें, क्या करें, हा? दूर से नमस्कार करना चाहिए। तो जैसे ही ये भाव देवकी वसुदेव में उत्पन्न हुआ, कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, कृष्ण का मजा चला गया, अरे रे रे रे, अब ये मुझे पुत्र नहीं मानते हैं, मुझे भगवान मान रहे हैं। अर्जुन के साथ भी ऐसे हुआ, जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा तब अर्जुन का सख्य भाव विचलित हो गया, अरे आप भगवान हैं, मैंने बहुत गलती की, आपको मन हे यादव हे सखा ऐसे कह के मैंने पुकारा, आपके साथ खाते पीते उठते बैठते मैंने बहुत अपराध किए आपके। तो जब अर्जुन, देवकी, वसुदेव आदि कृष्ण के तत्व के बारे में, भगवत्ता के बारे में जान गए, तो उनका जो सख्य प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है, वो विचलित हो गया। परंतु वृंदावन के निवासियों का प्रेम विचलित नहीं हुआ, हालांकि वो कभी कभी भ्रमित हो जाते थे, ब्रजवासी ये बच्चे ने कैसे गोवर्धन पर्वत को धारण किया, ये कौन है, ये हम देखते हैं थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। कभी ये बच्चा बादल के गरजने पर माँ की गोदी में भाग के चला जाता है डर के मारे, और कभी कभी बड़े बड़े असुरों को आसानी से मार डालता है, और आज इस 7 साल के बालक ने इतना बड़ा पर्वत छोटी उंगली पर धारण किया। सब लोग नंद महाराज के पास गए, अरे ये कौन है ये बच्चा, ये कृष्ण हमारे यहाँ कैसे आया, हमारे छोटे से गाँव में, ये अद्भुत बच्चा है कोई, क्या ये कोई देवता है, क्या क्या ये कोई भगवान है। तो नंद माँ ने हंसकर है क्या भूल जा भूल जा चलो तो कृष्ण है, तो कुछ समझा देते तो ब्रजवासी फिर भी चले जाते। तो जब भी उनको बोला भी जाता कि भग, फिर भी उनका स्नेह कृष्ण के प्रति उतना ही मधुर रहता, ये अंतर है। इसलिए वृंदावन की भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो जानते हुए भी गोपियों के माधुर्य स्नेह में अंतर नहीं पड़ा। जैसे जगन्नाथ मिश्र के बारे में बताया जाता है कि जब उनको निमाय पंडित के बारे में वो बताया गया, क्योंकि वो निमाय पंडित को डांटते थे बचपन में, पढ़ाई ठीक से करो ये करो, तो किसी ने बताया कि आप नहीं जानते मिश्र, ये भगवान है। तो जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिए, भगवान भी होगा फिर भी ये मेरा पुत्र है, और पिता का कर्तव्य होता है पुत्र को डांटना। तो पुत्र स्नेह जो वात्सल्य भाव था वो भगवत ज्ञान से भी विचलित नहीं हुआ। तो गोपियों के बारे में भी ऐसा, वो जानते थे लेकिन उनकी जो भावना थी कि ये हमारे प्रेमी है, वो भावना बदली नहीं। ठीक है, प्रश्न यह है कि भगवान भी अपने आप को कैसे लीला में भूल जाते हैं। उत्तर यह है कि भगवान अपने आप को, भगवान की लीला शक्ति उनको ढक देती है, उस लीला के स्वाद को बढ़ाने के लिए, उसके माधुर्य को, मिठास को बढ़ाने के लिए। यदि कृष्ण को भी याद रहे कि मैं भगवान हूँ और ये मेरे माता पिता, केवल मैं नाटक कर रहा हूँ, ढोंग कर रहा हूँ, तो इतना आनंद नहीं आएगा। जब कृष्ण भी अपने आप को भूल जाएंगे कि मैं भगवान हूँ, तब वास्तव में वो वात्सल्य रस का आनंद ले पाएंगे कि वास्तव में मैं निर्भर हूँ मेरे माता पिता के ऊपर। केवल उनको लगे मैं भगवान हूँ, ये मेरे माता पिता है, चलो मैं थोड़ा नकल कर रहा हूँ, जस्ट उनको खुश करने के लिए मैं कर रहा हूँ। नहीं, जैसे कभी कभी एक नाटक में कोई व्यक्ति किसी का भूमिका निभा रहा है, राजा है और बहुत इमोशनल सीन चल रहा है, बहुत ही रोना धोना चल रहा है, ट्रेजेडी है, बहुत कोई मर गया, कोई रो है, क्या है, तो कभी जो नट है जो भूमिका निभा रहा है वो भी उस भूमिका में इतना बह जाता है कि वो भी वास्तव में रोने लगता है, उस भाव में इतना मग्न हो जाता है कि वो भूल जाता है कि मैं बाहर की दुनिया में कौन हूँ। वो उसी भूमिका में बह जाता है और अपने आप को वही समझने लगता है जो नाटक में वो कर रहा है। उस भूमिका से इतना अपना संबंध जोड़ लेता है कि अपने असली अस्तित्व को भूल जाता है। तो भगवान के साथ ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं लीला। ये लीला क्या चीज है? जब भगवान अपने आप को एक ग्वाल बाल समझने लगते हैं, ये लीला है। भगवान का ऐसे सोचना कि मैं एक ग्वाल बाल हूं, ये लीला है। भगवान तो भगवान है, लेकिन वो ऐसे सोच रहे हैं कि मैं ग्वाल बाल हूं, मेरे गैया कहाँ है, मेरे मित्र कहाँ है, ब्रह्मा जी ने गायों को चोरी कर लिया, तो कृष्णा के जैसे कि उनको पता ही नहीं, भगवान तो सब कुछ पता है, उसे मेरे गैया कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, किसने ले लिया, क्या किया, इधर उधर घूम रहे हैं गांवों को ढूंढने के लिए, लीला। भगवान भी उस भाव में मग्न है और नित्य रूप से गोलोक वृंदावन में इसी भाव में रहते हैं, इसलिए ये लीला है। वहां भी लीला करते हैं, वहां भी, यहाँ भी। तो भगवान को भगवान बनने का इतना शौक नहीं है, भगवान बन के रहना भगवान को इतना पसंद नहीं होता, लेकिन एक बाल बाल बन के रहना ये भगवान को बहुत पसंद है। जैसे एक हाई कोर्ट जज को, या वो जज में जाता है, कोर्ट में जाता है, वहाँ बैठ के कुछ निर्णय लेता है, किसी को फांसी की सजा देता है, किसी को बख्शीश देता है, कुछ करता है, उसको इतना आनंद उसमें नहीं आता है। वो सोचता है कब मैं घर जाऊँगा, मेरे बच्चों को कंधे पर बिठा के उसको उसके साथ में कुश्ती करूँगा, उसमें उसको ज्यादा आनंद आता है। ये तो ड्यूटी है, कर्तव्य, न्याय न्यायालय में जाके कुछ करना, लेकिन उसका असली आनंद किसमें है? घर में आके अपने परिवार के सदस्यों के साथ रमण करना। उतरे से भगवान जो भगवत्ता है, ये सृष्टि का काम करना, ये भी सब उनकी लीला ही है अवश्य, क्योंकि भगवान का हरेक कार्य लीला है, फिर भी भगवान को इतना आनंद इन चीजों में नहीं आता है। भगवान पसंद करते हैं एक ग्वाल बाल बनना, और उस ग्वाल बाल के रूप में जितने भी संबंध हैं उनमें वो रमण करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो भी काफी देर हो गया, और किसी को प्रश्न? तो काफी देर है वैसे, हाँ, शाम को चर्चा करते हैं, ठीक है, 4:15 अभी, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।